समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत।
और आज सवेरे की शुरुआत करते हैं रहीम के दोहे से। टूटे सृजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुख्तार। रहीम कहते थे कि सज्जन कितनी ही बार क्यों ना रूठ जाए, उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोती की माला अगर टूट जाए तो उन मोतियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें वापस माला में पिरो लिया जाता है। तो इस सीख को अपनाते हुए क्यों ना आप और हम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की।
Yes, good morning, good day everybody. Welcome along listeners to our daily news magazine program Aaj Savere. Well, we are starting with this wonderful thought that Farhat just shared with us. Also, let me give you a brief about the program. First, we'll give you the latest in national and international news. Also, we'll be providing you Metro City updates as well as some historical information related to this day. Today, it's 20th of August. Let's begin with the headlines first.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। श्री मोदी बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे दो रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे गंगा नदी पर ओटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम पश्चिम बंगाल में कोलकाता में नव निर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। वे जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बांदर स्टेशन तक स्वयं मेट्रो से यात्रा करेंगे। इसके बाद वे कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
So this next update, it is about our human space flight program. Well, ISRO chairman V. Narayanan has said that India's maiden manned space mission, which is Gaganyaan, will conduct its first test flight in December this year. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Narayanan said that Gaganyaan is progressing well as 80% tests, or around 7,700 tests, have been conducted so far. He added that the remaining 2,300 tests will be completed by March next year. Highlighting other achievements of ISRO, Mr. Narayanan said that 196 accomplishments have been achieved so far this year, including GLEX 2025 and a high-thrust electric propulsion system. He noted that a 6,500-kilometer communication satellite of USA will be launched from Indian launch pad. He further highlighted that 13 terabits of data from Aditya L1 has been provided to the scientific community through this year.
In another 2 to 3 months, we are going to have a 6,500 kg communication satellite of USA going to be launched using our launch vehicle. And till today, 433 satellites of 34 countries are done from India.
Talking about ISRO's role in Axiom 4 mission, the ISRO chief mentioned that ISRO's technical expertise played crucial role in ensuring safe launch of this mission. He noted that ISRO corrected the LOX leakage observed in the first stage of Falcon 9 rocket, avoiding catastrophic failure.
निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी और वित्त मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर आनंदन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक होंगे। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होना है। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। देश में ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin in Moscow during his three-day visit to Russia. Dr. Jaishankar also held talks with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov yesterday and reviewed the bilateral agenda while exchanging views on regional and global developments. India and Russia vowed to expand their bilateral trade in a balanced and sustainable manner. Addressing a joint press conference with his Russian counterpart after talks, Dr. Jaishankar underlining the need to swiftly address non-tariff barriers and regulatory impediments. He said, relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Dr. Jaishankar said, geopolitical convergence, leadership contacts and popular sentiment remain its key drivers. During their talks, Dr. Jaishankar and Mr. Lavrov also deliberated on ways to combat terrorism. Dr. Jaishankar said, sustaining energy cooperation through trade and investments is also important.
रेलवे त्योहारों के अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुगमता के लिए 380 गणपति विशेष यात्री रेलगाड़ियां चलाएगी। वर्ष 2023 में इस प्रकार की कुल 305 रेलगाड़ियां चलाई गई थी, लेकिन पिछले वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 358 हो गई। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में त्योहारों के दौरान यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए मध्य रेलवे सबसे अधिक 296 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पश्चिम रेलवे 56, कोंकण रेलवे 6 और दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएंगी। गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाई जाएगी। त्योहारों में संभावित भीड़ को देखते हुए 11 अगस्त से गणपति विशेष रेलगाड़ियां शुरू हो जाएंगी और त्योहार के निकट आने के साथ ही इनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जाएगी।
एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सुमन बिल्ला हैज सेड that heritage sites are not monuments of the past, but the assets of the future. He said this while addressing a one-day strategic conclave on world heritage and sustainable tourism in New Delhi yesterday. The conclave was organized by the Ministry of Tourism in collaboration with UNESCO and Atithi Foundation. Mr. Billa emphasized that the heritage sites can create livelihood, fill community with a sense of pride, and can become economic engines for growth and development of the country. Mr. Billa added that the primary inspiration for several travellers to visit India is its cultural and heritage tourism. He said tourism and heritage are two sides of a coin, and if there is no preservation, there is no tourism.
Tourism and heritage are two sides of the same coin, in the sense that if there is no preservation of heritage, then there is no tourism. But equally importantly, that if there is no showcasing of tourism, if people do not go and they are able to appreciate and have a sense of pride of what their country or what their heritage monuments have, then it is equally meaningless to conserve it as well.
Speaking at the occasion, Chief of Culture, UNESCO Regional Office for South Asia, Juni Han, said that responsible and sustainable tourism will help to protect the cultural treasures and environment, support local community, and turn the untapped potential into a lasting legacy. She also thanked the ministry and praised the rich culture and heritage of India.
Tourism depends a great deal on culture sector, more particularly on cultural heritage. As for World Travel and Tourism Council, the tourism sector contributes to global GDP totaled $10 trillion. As a share, travel and tourism represented 10% of the global economy. Also, the sector is estimated to contribute 357 million jobs globally.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कल आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम हेतु सहायता योजना स्माइल के अंतर्गत एक विशेष 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान 25 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे 18 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। प्रशिक्षण में व्यावसायिक अवसरों की पहचान, बाजार सर्वेक्षण, उद्यमिता सहायता इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं और कराधान, बैंकों के लिए प्रक्रिया और औपचारिकताएं, नियामक अनुपालन पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
एंड नाउ न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
The first ever Khelo India Water Sports Festival began on a high note in Srinagar, Jammu and Kashmir with 17-year-old local Shikarawala boy Mohsin Ali winning the first gold medal yesterday. Mohsin, who rose Shikaras on Dal Lake, won the men's 1000-meter kayaking race beating competitors from Odisha and Madhya Pradesh. In the other events, Vishal Kumar from Uttar Pradesh claimed gold in the men's 1000-meter canoe singles. In the women's 200-meter canoe singles, Odisha's Rasmita Sahu won gold. Union Sports Sports Minister Mansukh Mandavia inaugurated the event via video message. The opening ceremony was attended by several dignitaries, including Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha. The three-day festival, running until tomorrow, features over 500 athletes from 28 states and union territories. Now we have from the Under-20 World Wrestling Championships 2025, where India added two more medals, with Reena and Priya Malik winning silver in their categories. Meanwhile, Kajal, a 2024 cadet world champion and reigning Under-20 Asian champion, stormed into the women's 72kg final after two dominant wins. So far, India's medal count at the championships now stands at 5, including 1 gold and 4 silver. Aishwarya Rai Nigam, Sports Desk, Akashvani.
और प्रतिष्ठित ड्यूरेंट कप फुटबॉल का फाइनल कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच होगा। मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक युवा भारती क्रीडांगन में खेला जाएगा। बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में डायमंड हार्बर एफसी ने ईस्ट बंगाल एफसी को 2-1 से हराया। पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलांग लाजांग एफसी पर 1-0 से जीत दर्ज की थी। और अब श्रोता और रुख कर लेते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो शगुन, क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में जुड़ी खबरों में?
यस फरहत, आई विल बिगिन विद चेन्नई। The State Forest Secretary Supriya Sahu has said the state government has planned an elite marine force to protect wildlife along Chennai coast. They will guard turtle nesting beaches and fragile marine habitats with boats, surveillance gear and joint action squads. The unit will crack down on poachers, polluters and destructive trawlers. It will also focus on turtle nesting sites and other sensitive marine habitats located within 5 nautical miles of the shoreline. Patrolling and surveillance will be stepped up during the Olive Ridley turtle nesting and hatching season from November to April. Now we are heading to Bengaluru. The Indian Sugarcane Farmers Association President Kuruburu Shantakumar has welcomed the gaming bill brought out by the central government that bans online betting of gaming apps. He noted that lakhs of farmer children have fallen prey to online betting and cricket betting, and several of them had committed suicide. He informed that the Farmers Associations and G. Narayan Kumar Kannad Chaluvali Kendra Samiti head Gurudev Narayan had discussed the menace of online betting in December and had appealed to the central government to initiate action against such gaming apps. He expressed happiness over the government's decision to ban such apps that are detrimental to society. He requested the state and central government to set up the cyber security ministry and curb cyber fraud that cheats the gullible. Now, listeners, so we'll provide you the update from Hyderabad. Former Director General of Border Roads Organization, Lieutenant General Harpal Singh, has been appointed as advisor to the Telangana State Government. The retired officer's services will be used by the irrigation and command area development in troubleshooting and accelerating the works on irrigation tunnels being undertaken. He will be in the office for 2 years. As the Director General of Border Roads Organization and as Engineer-in-Chief of the Indian Army, he had been instrumental in development of strategic tunnels and many other underground infrastructure assets for defence forces. Now, listeners, listen intently as Farhad will be telling us the updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली की खबरों से कर लेते हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सर्जरी मिशन और शिक्षा क्लिनिक का आयोजन कर रहा है। इस सेमिनार का उद्देश्य जलने के निशान और सिकुड़न से पीड़ित वंचित रोगियों के लिए निःशुल्क पुनर्निर्माण सर्जरी उपलब्ध कराना है। इस सेमिनार में लगभग 110 मरीजों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 40% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं। वहीं महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में एक दवा कंपनी में नाइट्रोजन गैस के रिसाव से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम के अनुसार बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मा की एक इकाई में कल नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। 6 कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 की मौत हो गई जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप में 5 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 2 अधिकारियों सहित 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नाबन्ना के प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करके उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर उनके खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज गरज के साथ बारिश होगी यहां पर और न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मुंबई की बात करें तो आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में भी गरज के साथ बारिश हो रही है। न्यूनतम तापमान रहेगा वहां पर 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 22 degrees Celsius and maximum of 29 degrees Celsius.
और शगुन आइए हम अपने श्रोताओं को अब इतिहास के पन्नों को पलट देते हैं। उनके लिए सन 1649 की अगर बात की जाए तो आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जो पहले मद्रास था, वो उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा सन 1854 में पहला जिनेवा कन्वेंशन सेंटर जो है वो अपनाया गया। 12 राष्ट्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले। वे अपने पक्ष की परवाह किए बिना घायल सैनिकों की देखभाल करने पर सहमत हुए और इसी से अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की नींव पड़ी।
जी, नाउ आई विल टॉक अबाउट द ईयर 1911। एन एमेचर पेंटर हैड सेट अप हिज ईजल नियर लियोनार्डो दा विंची'स मोनालिसा एट द लूव्र इन पेरिस, ओनली टू डिस्कवर दैट द मास्टरपीस इज मिसिंग। Earlier in the day, in perhaps the most brazen art theft of all time, Vincenzo Peruga had walked into the Louvre, removed the famed painting from the wall, hid it beneath his clothes, and then he escaped, while the entire nation of France was stunned. Theories abounded as to what could have happened to the invaluable artwork. Well, most believed that professional thieves could have not been involved because they would have realized that it would be too dangerous to try to sell the world's most famous painting, so they could not be involved there, which is this particular painting, Mona Lisa. The painting was recovered in the year 1913. Now, in the year 1963, Captain Joseph A. Walker flew this X-15 rocket plane. He became the first person to reach space twice.
और अगर बात की जाए सन 2007 की, तो आज के दिन मिस्र के पुरातत्वविदों ने पश्चिम रेगिस्तान के सिवा क्षेत्र में लगभग 20 लाख साल पुराने मानव पद चिन्हों का पता लगाया। और अब वक्त है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जाने माने साहित्यकार व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की। उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन से लोगों को गुदगुदाया भी और समाज के गंभीर सवालों को बहुत सहजता से उठाया। व्यंग्य लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का व्यंग्य वैष्णव की फिसलन उन लोगों पर सटीक बैठती है जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए नैतिकता का मुखौटा पहन लेते हैं। जी हां, वैष्णव की फिसलन हिंदी साहित्य में एक ऐसी कालजयी रचना है जो धार्मिक पाखंड और सामाजिक दिखावे पर करारा प्रहार करती है। इस व्यंग्य में परसाई ने बचाव पक्ष का बचपन जैसे प्रतीकों के माध्यम से ये दिखाया कि कैसे लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए नैतिकता का मुखौटा पहनते हैं। हरिशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को न केवल एक विधा के रूप में स्थापित किया बल्कि उसे सामाजिक बदलाव का भी हथियार बनाया। उनकी रचनाएं स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं और शोधार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी कुछ कृतियां जो हिंदी को व्यंग्य को समझने में काफी मदद साबित करती हैं, तो वो हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नाफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पाव पीछे, बेमानी की परत, और इसके अलावा भी उनकी बहुत सारे निबंध संग्रह भी रहे और जो काफी लोकप्रिय रहे।
I will also talk about an author here, Farhat K. Chopin. Well, the author of short stories and novels based in Louisiana. She's considered by scholars to have been a forerunner of the 20th century feminist authors. Well, her most famous work, which is best known, it is the 1899 novel, The Awakening. Other major works that she has crafted were two short story collections and two novels. The collections are Bayou Folk and A Night in Arcadie. Her important short stories, they include The Zero's Baby, a tale of when there is a kind of a relationship in the antebellum Louisiana. Also, The Story of an Hour is one of her most acclaimed works. The Storm is also there, so you can find it, listeners, on Google as well, and can read whenever you want, because these particular short stories, these are best known for her works, and you will learn a lot if you are a literary person and fond
of them. अगर literature की बात की जाए या फिर साहित्य से जुड़ी किताबों की बात की जाए, तो आज के जो युवा हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं उन किताबों से, क्योंकि ऐसे शब्द जो हैं, वो देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे, जो आज के जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे काफी प्रभावित होते हैं.
राइट.
और अब आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चिरंजीवी की, जिनका जन्मदिन है. तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड के आज के सबसे बड़े नेता चिरंजीवी ने अपने 3 दशक के फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसे अभिनेता का पात्र निभाया जो गरीब और आम लोगों को बचाता है. चिरंजीवी को 4 बार नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा भारत सरकार ने चिरंजीवी को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है. फिल्मों के अलावा चिरंजीवी राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे. इनके प्रशंसकों के इनके प्रति दीवानगी देखने लायक होती है. तो आइए सुन लेते हैं उनकी फिल्म से ये प्यारा सा गीत.
Well, he has, Farhat has been telling us, he holds the record for the most industry hits in Telugu cinema as well, with 8 films emerging as the top grossers of their time, a feat which is unmatched by an actor in the industry's 100-year, well, even more than 100-year history. Now, let's also talk about a musician. Well, I am talking about Creed Bain Taylor. He has been a record producer as well, and his career, it involves being the most acclaimed and most celebrated jazz artist. His career also includes periods at Bethlehem Records, ABC Paramount Records, and including its jazz label as well. And the song which I have chosen, this is his orchestra work, so listen in.
अब आइए एक और साहित्यकार की बात कर लेते हैं. ये कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में भी जाने जाते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर की. लंबे अरसे तक इन्होंने आकाशवाणी की सेवा की. इनकी कविता में रंग, रूप, रस, भाव और शिल्प के नए नए प्रयोग देखे गए. मुख्य काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिल्पा पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने और छाया मत छूना मन आदि. इन्होंने कहानी, नाटक और आलोचनाएं भी लिखी. गिरिजा कुमार माथुर की मैं वक्त के हूँ सामने नामक काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है.
Well, yes, and there is a very, this particular song is there. He published his collection of poems, which is Manjeer. And, well, this particular song, this is not a song as well as a rhyme as well for the kids, which they have been grown up. And we also have been listening to it. This is We Shall Overcome. And into Hindi, it is as Hum Honge Kamyab. So let's listen into that.
और हर्ष, अगर मुझे लगता है इस गीत को हम जब भी सुनते हैं तो एक मन में जो होती है वो कामयाबी की अलग जग उठती है कि नहीं, हम कर लेंगे और हम हारेंगे नहीं.
वेरी मोटिवेटिंग एंड फरहत, इट्स रियली इंट्रीगिंग टू नो दैट इट वाज संग बाय अ फीमेल सिंगर ऑफ द दूरदर्शन ऑर्केस्ट्रा एंड द म्यूजिक वाज अरेंज्ड बाय सतीश भाटिया यूजिंग Indian musical instruments, and this version of the song was subsequently released by also TVS Saregama. The Hindi rendition was released in 1970 as a song of social upliftment.
और अब आइए आगे बढ़ते हैं और याद कर लेते हैं यू आर अनंत मूर्ति को. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे, आलोचक रहे और शिक्षाविद भी रहे. उन्हें कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है. उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार रही. ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8 कन्नड़ साहित्यकारों में से वे छठे थे. इन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्ग के कुलपति के रूप में काम किया. साहित्य शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
यस, परत वॉज टेलिंग अस अबाउट यू आर अनंत मूर्ति, द कंटेम्प्रेरी राइटर एंड क्रिटिक इन कन्नड़ा लैंग्वेज. नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर म्यूजिशियन हियर, फ्रेंच कंपोजर आर्शिल क्लॉड डिब्यूसी. Today it's his birth anniversary. He's seen as the first impressionist composer and was among the most influential composers of the late 19th and early 20th century. He showed enough musical talent to be admitted at the age of 10 to the France's leading musical college, the Conservatoire de Paris. He originally studied the piano but found his vocation in innovative composition despite the disapproval there, but he continued with his good work and this particular work. Let's listen to that. This is Arabesque. Well, his orchestral works, they include works such as Prelude à la Prémédie, The Faun, Nocturne and Image, which is spelled as image only. His music was considerable and he has been also acclaimed with other artists such as Wagner and German musical tradition artists which carried on with that work. He regarded the classical symphony as obsolete and sought an alternative in his symphonic sketches La Mer. His piano works, listeners, they include a whopping 24 sets of preludes and 12 etudes. Now let me talk about another author. I am talking about Ray Douglas Bradbury, one of the most celebrated and 20th century American writers. Well, he worked in a variety of genres, including fantasy, science fiction also, horror and mystery. Well, and also this includes realistic fiction. He is best known for his novel Fahrenheit 451. This was published in the year 1953, and also his short story collections, The Martian Chronicles, The Illustrated Man, and The October Country. Well, other notable works, they include the coming of age novel Dandelion Wine and the dark fantasy Something Wicked This Way Comes. This was published, listeners, in the year 1962. Well, I have chosen another musician now, listeners, for you. He has been producing and composing music in the genre of jazz. And the song which I have chosen is wonderful. This is Tiptoe Through the Tulle.
Shades of night are creeping, willow trees are weeping, old folks and babies are sleeping. Silver stars are gleaming, all alone I'm scheming to get you out here.
Well, yes, he was the first jazz guitarist to record as a soloist. He is, his full name being Dominique Antonio Nicholas, and we, like his fans, also call him as Nick Lucas, very popularly known as with this particular name, Nick Lucas. His popularity during his lifetime came from his reputation as a singer, and this particular song, which you are listening in the background, this is Tiptoe Through the Tulips.
Shadow of a willow tree and tiptoe through the tulips with me.
और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और अंत में चलते चलते हम रहीम के दोहे का जिक्र कर लेते हैं एक बार फिर से. रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए. तो रिश्तों को जो है वो निभाते रहिए, उन्हें तोड़िए मत, क्योंकि अगर रिश्ता एक बार टूट जाता है तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है.
सच अ वंडरफुल थॉट देयर फरहत. ऑल्सो लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन समाचार प्रभात, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. So we thank you so much, listeners, for tuning in. We hope you have a wonderful day ahead.
Namaskar. Namaskar.